परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए जकरिया की पुस्तक और उसके 14 अध्याय से अध्ययन को जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है कि हम अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके जीवित और सामर्थी वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। इस समय हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन रेडियो के निकट बैठे हैं आपके वचन को सुनने के लिए, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जीवन आपके वचन को समझने पाए, अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें, वचन के द्वारा उन्हें आप दृढ़ करें। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम जकरिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में अध्याय 14 से अध्ययन करेंगे। अध्याय 14 का विषय है मसीह यीशु का पुनः आगमन। जकरिया की पुस्तक का यह अंतिम भाग पद 9 से 14 है, जिसमें भविष्यवाणी का भारी वचन है। उसका अंतिम अध्याय 14 है। पहला भारी वचन था प्रभु ईश्वर के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी, जिसे हम अध्याय 9 से 11 में पाते हैं। दूसरा और अंतिम भाग है पद 12 से 14 में प्रभु ईश्वर के पुनः आगमन की भविष्यवाणियां। इस अंतिम भाग में वह सब है जो बच रहा है। मुख्य बात यह है कि जकरिया की पुस्तक में एक विशेष योजना व्यक्त की गई है जो इस पुस्तक के तीनों भागों में प्रकट है। मेरे प्रियो, हमारा अध्ययन वहीं से आरंभ होता है जहां 10 दर्शन है, तदोपरांत ऐतिहासिक अंतराल है और अब यह अंतिम मुख्य भाग जिसमें भविष्यवाणी के भारी वचन है। इसराइल के कष्टों के समय से आरंभ करके हम वहां तक आते हैं जब संपूर्ण राष्ट्र परमेश्वर की ओर फिरेगा और उन पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। यह सब प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन का दृश्य तैयार करता है। क्योंकि तब तक वे महाक्लेश अर्थात महाकष्ट में प्रवेश कर चुके होंगे। मेरे मित्रों, यह अंतिम अध्याय एक महा प्राकष्ठा का अध्याय है, परंतु इसमें जकरिया द्वारा दिया गया परमेश्वर का उद्देश्य सिद्ध होता है। यह अध्याय प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर प्रभु राज की स्थापना तक जाता है। इन मुख्य भागों में से प्रत्येक में जकरिया उस युग के इसराइलियों को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य को निहारता है तथा भविष्यवाणियों का क्रम प्रस्तुत करता है। इस अध्याय के विषय में हमें कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। जी हाँ, पहली बात, यह पूर्ण रूपेण भविष्यवाणी है। दूसरी बात, इसकी भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में, यह अंतिम समय की भविष्यवाणी है जो प्रभु राज की स्थापना की चर्चा करती है। कुछ टीकाकारों का मानना है कि ये भविष्यवाणियां शाब्दिक अर्थ नहीं रखती हैं और इन्हें वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाया जा सकता है, जिसके कारण इसकी व्याख्या बड़ी विचित्र हो जाती है। ऐसे ही विचारकों में से यदि आप लें तो लो और ड्यूएट का कहना है, यह अध्याय संपूर्ण ऐतिहासिक व्याख्याओं को चुनौती देता है। जी हाँ, यह सच ही है, क्योंकि अब तक इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अतः यह अध्याय पूर्ण रूपेण भविष्यवाणी है, अर्थात आज के बाद की बातें, भावी घटनाएं हैं। मेरे मित्रों, इस अध्याय की एक ही संतोषजनक व्याख्या है कि इसका शाब्दिक अर्थ निर्धारण करें। ऐसा करने पर ही इसका अर्थ निकलेगा। इसकी प्रत्येक व्याख्या को संदर्भ सहित होना आवश्यक है। किसी भी भविष्यवाणी या धर्मशास्त्र की व्याख्या करते समय आपको आगे पीछे का संदर्भ देखना आवश्यक है, और साथ ही आपको आत्मा की अगुवाई और संपूर्ण वचन के परिक्षेत्र में रहना है। आप इसे पढ़कर कैसी भी व्याख्या नहीं कर सकते जिसका वास्तव में कोई आधार नहीं है। मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि यह धर्मशास्त्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि इसमें धर्मशास्त्र की शाब्दिक व्याख्या और इसके आत्मिक अर्थ निर्धारण के अंतर स्पष्ट प्रकट होते हैं। इसकी आत्मिक व्याख्या निरर्थक हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर यह अंश उपमा आधारित या गुढ़ या कपोल कल्पित हो जाता है। ऐसी व्याख्या इसे वर्णात्मक की अपेक्षा नकारात्मक बना देती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पास्टर की मान्यता क्या है, तो उससे कहें कि वह आपको जकरिया का अध्याय 14 पढ़कर आपको समझाए। इस अध्याय के संबंध में विचार व्यक्त करने पर मनुष्य का विश्वास क्या है प्रकट होता है। कुछ विचारक जैसे हेंगस्टेन वर्ग अध्याय 14 को संपूर्ण मसीही युग से संबंधित करते हैं। आप कैसी भी व्याख्या करके इस भविष्यवाणी को मसीही युग या कलिसिया युग से संबंधित नहीं कर सकते हैं। एक और श्रेष्ठ विचारक लियोपोल कहता है, अतः हमारे ये पद किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित नहीं है, वे किसी भी ऐतिहासिक घेराव, विजय और बंधुआई से संबंधित नहीं है, वे प्रतीकात्मक रूप से संपूर्ण नए नियम की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। परमेश्वर की प्रजा अपने बैरियों द्वारा सताई जाएगी और लगातार कष्ट सहेगी तथा पतित की जाएगी, परंतु एक बचा हुआ समूह सदा अविनाशी रहेगा जो बहुत छोटा नहीं होगा। मेरे मित्रों, उसके कहने का अर्थ क्या है? उसके कहने का अर्थ है कि वह इस अध्याय के विषय में कुछ नहीं जानता है कि क्या कहे, अतः वह इस अध्याय के संबंध में शब्द जाल बुनता है, जैसे डबल रोटी पर मक्खन लगाना, और मक्खन भी ऐसे ही पिघल जाता है। मेरे विचार में ये पद प्रतीकात्मक नहीं है और न ही वे नए नियम के विषय में हैं। यहाँ जिस शेष समूह की चर्चा की जा रही है वह स्पष्ट रूप से बचा हुआ यहूदी समुदाय है। हमें स्पष्ट समझना है कि यह अध्याय अंत समय से संबंधित है। कुछ विचारकों के अनुसार यह अध्याय यहूदी भाव शून्यता की त्रुटि है। डॉक्टर अंगर का कहना है यहूदी भाव शून्यता अनुचित की कि वह मसीह के परित्याग और मृत्यु की भविष्यवाणी को उसके राज्य की महिमा के प्रकटीकरण के कारण अनदेखा करती है। मेरे प्रियो, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हम मूल लेख की ओर आगे बढ़ते हैं। जकरिया के पुस्तक 14 अध्याय उसके एक पद में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। यहां पर लिखा है सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। मेरे प्रियो, यह समाचार पत्र की सुर्खी के लिए एक अच्छा वाक्य है। किसी भी लेख को आप पढ़ेंगे तो उसमें सुर्खी से संबंधित विचार होंगे। यहां भी ऐसा ही है। कहता है सुनो यहोवा का एक दिन। यह एक प्रभावी कथन है। हमारे समक्ष इन तीन पदों में यरूशलेम के अंतिम घेराव की भविष्यवाणी है। तदोपरांत पद 4-7 में मसीह के आगमन की चर्चा की गई है। यद्यपि हमने जकरिया के पुस्तक के पूर्वकालिक अध्यायों में इसकी भविष्यवाणी देखी है, यहां यह एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में रखी गई है। उदाहरण स्वरूप महाक्लेश और यरूशलेम के घेराव के संबंध में अन्य संदर्भों में जो महत्वपूर्ण बात है वह महाक्लेश के उत्तर पक्ष पर और उद्धार पर ध्यान केंद्रित किया गया है और जकरिया इसराइलियों को प्रोत्साहित करता है, परंतु यहां दर्शाया गया है कि यहोवा का दिन कैसा त्रासदीपूर्ण होगा। योएल नबी कहता है कि यहोवा का दिन ज्योति का समय नहीं होगा, वह अंधकार का समय होगा। उसका आरंभ ही अंधकारमय होगा। उस समय इन लोगों की निराशा और असहाय स्थिति हमें समझना कठिन है। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। मेरे प्रियो, यह इस अंश की सुर्खी या शीर्षक है। यह उस भावी दिन का उल्लेख करता है जो कलीसिया के पृथ्वी से उठाए जाने के बाद का दिन है, जब ख्रिस्त विरोधी महाक्लेश लाएगा, जबकि संसार को यह भ्रम होगा कि वह प्रभु राज है। और सच तो यह है कि प्रभु यीशु की अपेक्षा न तो कोई ऐसा नेता हुआ है और ना होगा जो विश्व शांति का राज स्थापित कर पाए। यरूशलेम के शत्रु उसका फिर एक बार घेराव करेंगे जो अंतिम घेराव होगा। जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। यह यरूशलेम का अंतिम घेराव होगा जिसका चित्रण जैसा यहां पर दिया गया है अच्छा नहीं है। शत्रु नगर को जीत लेगा। जकरिया कहता है सब जातियों को, तो मेरे विचार में उसके कहने का अर्थ है शत्रु की सेना में सब जातियों के प्रतिनिधि होंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में यही तो है, उसकी सेना में सब राष्ट्रों के सैनिक होते हैं। अतः उस समय की शत्रु सेना भी ऐसी ही मित्र राष्ट्रों की सेना होगी। वे यरूशलेम पर आक्रमण करके उसे जीत लेंगे और उस समय कुछ लोग भागने में सफल होंगे, कुछ विचारकों का सोचना यह भी है और मेरा भी यही विचार है कि वे चट्टानों में बने नगर पेत्रा में शरण लेंगे। मसादा भी उनके लिए एक अच्छा शरण स्थान होगा। सन 70 में जब रोमी तीतुस ने इसराइल पर आक्रमण किया था तब वे वहीं चले गए थे, परंतु बम वर्षा के लिए मसादा एक सुलभ लक्ष्य है। अतः मेरे विचार में चट्टानों का नगर पेत्रा अधिक सुरक्षित स्थान होगा। जकरिया एक दुखद स्थिति का वर्णन भी करता है, वह नगर जीत दिया जाएगा, लूटा जाएगा और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। जकरिया इन तीन मुख्य बातों का वर्णन करता है। तब हम आगे पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। यह आने वाला उद्धारक का चित्रण है। इस समय उनकी सहायता न तो उत्तर से, न दक्षिण से, न पूर्व से और न पश्चिम से आएगी, परंतु आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर से आएगी। यह उद्धारक प्रभु यीशु को छोड़ और कोई नहीं होगा। वह अपने लोगों के उद्धार के निमित्त पृथ्वी पर आएगा। जकरिया के पुस्तक 14 अध्याय उसके 4 पद में आगे लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। यह एक महान कथन है और इसका अर्थ वही है जो लिखा है। जब प्रभु यीशु आएगा तब वह जैतून के पर्वत पर उतरेगा। जकरिया कहता है कि वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, तो वह वहां पांव ही रखेगा, हाथ नहीं। मनुष्य चांद पर जाकर आ सकता है, तो परमेश्वर के लिए क्या यह काम कठिन है कि प्रभु यीशु जैतून के पर्वत पर उतरे? वह महिमामय प्रभु है। उसके पांव पर कीलों के चिन्ह हैं और उनके पांव ने ही स्वर्गरोहण के समय जैतून के पर्वत से उड़ान भरी थी। वह अपने पुनः आगमन के समय भी जैतून के पर्वत पर ही उतरेगा। उसने अपने शिष्यों को यही कहा था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मेरे प्रियो, भविष्य में यह भविष्यवाणी पूरी होगी, परंतु कब? यहोवा के दिन जब कष्ट में होंगे और यरूशलेम शत्रुओं द्वारा रौंदा जाएगा। लिखा है, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने हैं। पूर्व की चर्चा करना कोई सामान्य बात नहीं है। आप संपूर्ण धर्मशास्त्र में देखेंगे कि इसराइल की सहायता पूर्व दिशा से आएगी। यही कारण है कि वे पूर्वी फाटक को इतना अधिक महत्व देते हैं, जिसे वे सुनहरा फाटक भी कहते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि यह सुनहरा फाटक भविष्य में बनाए जाने वाले मंदिर का पूर्वी फाटक होगा, जिससे प्रभु यीशु वहां पर प्रवेश करेगा। यहेजकेल भी कहता है कि उनकी सहायता पूर्व दिशा से आएगी। मेरे प्रियो, अमेरिका इसराइल देश की स्थापना से ही उनका सहायक है, परंतु वह पश्चिमी देश है। अतः आज इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं हो रही है। उनकी सहायता परमेश्वर से आएगी। इस भविष्यवाणी को भावी घटनाओं से जोड़ने पर स्पष्ट होगा कि यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। लिखा है, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर को और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। यहां महान भौगोलिक परिवर्तनों की चर्चा की गई है। जैतून पर्वत बीचों बीच से फट जाएगा। उस समय बहुत तीव्र भूकंप आएगा। लिखा है कि बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। आज यरूशलेम ऐसे अगम पर्वतों से घिरा हुआ है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तस्वीरों में देखा है। यदि आप उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में कहीं भी जाएं, वहां आपको दुर्गम स्थान ही दिखाई देंगे। यदि आप दक्षिण में बेतेल पर जाएं या बैतलहम जाएं, तो वहां भी अनेक पठार हैं। यदि आप उत्तर दिशा में चले जाएं, तो वहां भी दुर्गम मार्ग हैं। पश्चिम में भी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। यरीहो की ओर पूर्व में भी मार्ग बहुत कठिन है। अमेरिका ने वहां रोड़ी और सीमेंट की पक्की सड़क बनवा दी है, जिसके कारण पर्यटकों को यात्रा करने में सुविधा होती है और वे उस दुर्गम स्थान को समझ नहीं पाते हैं। परंतु जकरिया कहता है, 14 अध्याय उसके 5 पद में आगे, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर फिर से वह कहता है कि तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड में भाग जाओगे, अर्थात जो खड्डा बनेगा उससे लोग भाग जाएंगे। यही एक कारण है कि टीकाकारों के विचार में वे एदोम के चट्टानी नगर पेत्रा में भाग जाएंगे, परंतु धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहता है, अतः इसे पत्थर की लकीर ना समझें। आगे वह कहता है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र जन उसके साथ होंगे। मेरे प्रियो, यह एक अति रोचक बात है। यह प्रभु यीशु के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के विषय में है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय में भी यही लिखा है, परंतु वह कहता है कि उसके साथ स्वर्ग की सेना होगी। यहां लिखा है कि सब पवित्र जन उसके साथ होंगे। अब एक पल रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ें। कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसराइल के विरुद्ध सब जातियों की सेना का संयुक्त आक्रमण अन्य जातियों का पूरी रीति से प्रवेश करना है। और रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यह समय अभी तक नहीं आया है। प्रभु यीशु के प्रथम आगमन पर यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी और न ही यहूदियों का वर्तमान स्वदेश आगमन इस भविष्यवाणी को पूरा करता है, परंतु यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन पर पूर्ण होगी। मेरे मित्रों, क्या ही अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, परंतु हमने उसे नहीं पहचाना। अब वह दूसरी बार हमारे बीच में आएगा और वह राज्य करेगा, पवित्रता का राज्य, शांति का राज करेगा। क्या आज आप उसके राज्य में शामिल होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज आप प्रभु के निकट आएं, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को भी चाहता है, वह चाहता है कि आप भी उसके राज्य में शामिल किए जाएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 सच्चाई से तुझको। दीन पुत्र की है दीनी सर्वदा भंडार से जो, दीन पुत्र की है दीनी सर्वदा से जो, हे पिता त्रिएक स्वामी आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, तू है सच्चा मुक्तिदाता आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई।